الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. ये हमारी आखिरी क्लास है रमजान मुबारक के शुरू होने से पहले. इंशाअल्लाह तरीन कयास है कि हफ्ते के दिन से कम अज़ कम मिडिल ईस्ट के अंदर रमज़ान मुबारक शुरू हो जाएगा. तो रमज़ान मुबारक में जो हमारी तरतीब होती है वो रोज़ाना एक दरस कुरान की क्लास की तरतीब होती है, जो कि सऊदी अरब और कतर के वक्त के मुताबिक 1:30 बजे दोपहर को होता है, और उसी में फिर आप 2 घंटे ऐड कर लें तो पाकिस्तान का वक्त, और 2.5 घंटे ऐड कर लें तो इंडिया का वक्त बनता है. तो ये रमज़ान मुबारक में सिर्फ एक वाहिद ऐसी क्लास होगी जो कि इंशाल्लाह रोज़ाना के अतबार से जारी रहेगी, इल्ला ये कि कोई मजबूरी पड़ जाए, कोई सफ़र वगैरह आ जाए बीच में, तो उस दिन जो है वो क्लास नहीं हो सकेगी, वरना इंशाल्लाह हर दिन ये क्लास हुआ करेगी. वो दरस तफसीर की क्लास होगी, और उसके अंदर पहले हम सूरह बनी इसराइल की जो तफसीर चल रही है हमारी जुमे की मजलिस के अंदर और ख़वातीन की सुबह वाली क्लास में, तो उसी को हम इंशाअल्लाह आगे चलाएंगे, और उसको मुकम्मल करने के बाद फिर कोई दूसरी सूरत कुरान मजीद से शुरू करेंगे. इस्तकबाल रमज़ान के सिलसिले की ये दूसरी और इंशाअल्लाह आखिरी क्लास है. पहली क्लास जो है वो पीर के दिन हो चुकी है शाम के वक्त में, जिसके अंदर हमने आपके सामने कुछ अल्लाह ताला के हुक्म की अहमियत की बाबत बात करी थी उसके मुतालिक, और फिर उसके बाद हमने आपको रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल से मुतालिक, फ़ज़ीलत से मुतालिक चंद अहादीस सुनाई थी तसहील बहश्ती ज़ेवर किताब में से, और उसके बाद फिर हमने कुछ मसाइल की जो है वो सिर्फ निशानदही, बल्कि मसाइल की भी नहीं, मसाइल के उनवानात की निशानदही आपके सामने करी थी. तो उसी को चूंकि वो बहुत ही आखिर में और बहुत ही जल्दी में वो मामला हुआ था, तो कहा था कि अगली क्लास में भी इंशाल्लाह उसको थोड़ा और कवर कर लेंगे. तो आज जो है वो तसहील बहश्ती ज़ेवर ही के अंदर से इन्हीं मसाइल के उनवानात को थोड़ा सा पहले कवर करके फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो बेसिकली जिस तरह अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि वॉट टू वॉच आउट फॉर, ठीक है, वॉट टू वॉच आउट फॉर, यानी किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए रमज़ान मुबारक के दिनों में, ठीक है. वरना तो रमज़ान मुबारक का बहुत ही मामला सीधा साधा सा होता है कि भाई सेहरी का वक्त होता है, वो अजानों से यानी मिडिल ईस्ट के अंदर तो अजानों से पता चल जाता है कि जी सेहरी का वक्त ख़त्म हो गया, सही है. और पाकिस्तान वगैरह में जो है वो अजान जो है वो देर से होती है, तो उसमें फिर आपको जो प्रिंटेड टाइम टेबल्स होते हैं उसके हिसाब से सेहरी का वक्त जो है वो मालूम करना होता है. वो अब जो है वो इंटरनेट के ऊपर भी मिल जाते हैं, और सेलफोन्स के ऊपर जो अजान एप्स टाइप की एप्लीकेशंस होती हैं उनमें भी मिल जाते हैं कि भाई आपके इलाके में सुहूर का वक्त जो है वो कब ख़त्म हो रहा है और कब से जो है वो फजर का वक्त शुरू हो रहा है. तो उस वक्त पर जो है वो खाना पीना, उससे पहले खाना पीना रोक देना चाहिए, खाना पीना रोक देना चाहिए. जैसे इस किताब के अंदर भी लिखा है कि अंदाजन 3 मिनट का वक्फा देना चाहिए, यानी जो वक्त टाइम टेबल्स के अंदर, जदवल के अंदर, जिसको उर्दू में जदवल कहते हैं, तो उनमें जो टाइम लिखा हुआ है ना सूर के ख़त्म होने का, तो उससे एहतियातन 3 मिनट पहले जो है वो खाना पीना बंद कर देना चाहिए. एग्जैक्ट टाइम तक जो है वो इंतज़ार नहीं करना चाहिए. इल्ला ये कि आप उठे ही आखिरी 2 मिनट के अंदर हैं और आपने बस जल्दी से एक जो है पानी का गिलास घटाघट पी लेना है। तो उसमें फिर ये है कि भाई टाइम टेबल में तो है ना, तो वो वाली सिचुएशन अलग है। लेकिन आप बैठे हुए हैं और पराठे खा रहे हैं और अंडे खा रहे हैं और लस्सियाँ पी रहे हैं और जो है ना वो इंतज़ार कर रहे हैं कि बस मैं तो अजान के वक्त ही रोकूंगा, उससे पहले तो मैंने रोकना ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। तो उस मामले में एहतियात कर लेनी चाहिए, पहले खाने जितना खाना है। अच्छा, रात को सोने से पहले कुछ लोग खा करके जो सहरी की नियत कर लेते हैं ना, तो वो एहतियातन तो चलेगी कि भाई आंख ना खुली तो फिर क्या होगा, बगैर खाए जो है वो रोजा रखना पड़ जाएगा, एहतियातन तो चल जाएगा वो मामला। लेकिन जो सहरी की बरकतें हैं और जो सहरी का जो सवाब है ना, तो वो चूंकि वो एक मसनून अमल है, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, उससे महरूमी हो जाएगी, रोजा तो हो जाएगा ठीक है, लेकिन सहरी की बरकतों से हम महरूम रह जाएंगे। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अलार्म्स खूब सारे लगा के, अब तो हर बंदे के पास एक फोन होता है और हर फोन के अंदर जो है वो अलार्म का सिस्टम होता है, तो फोन को ऐसे रखें कि उसका जहां से स्पीकर निकलता है ना, जहां से स्पीकर के आवाज निकलने की जगह होती है ना, वो हो दीवार फेसिंग, बिल्कुल दीवार के साथ जुड़, यानी क्या कहते हैं, मुत्तसिल ना हो, हम कहते हैं सटा हुआ, हमारी वालदा कहती थी सटा हुआ ना हो, अगर ऐसा होगा तो फिर तो आवाज निकलेगी नहीं उसके अंदर से। थोड़ा सा दूर करके उस डायरेक्शन में अलार्म यानी अपने फोन को रखें कि उसके अंदर से जो आवाज निकलेगी ना, तो वो फिर एको हो करके फिर वो आपके कानों को फाड़ दे, ठीक है। एको होगी, और ऐसी जगह रखें जहाँ पे कम से कम 3 दीवारें हो, 3 यानी कोई ऐसा बुक शेल्फ वगैरह हो कि जिसमें जो है ना वो हर तरफ से एको हो रहा हो। तो फिर ऐसी आवाज के बाद जो है ना, फिर यानी मुर्दे के अलावा हर कोई जो है वो जाग जाएगा। तो ये अलार्म लगाने के बारे में एक टिप थी जो कि अल्लाह ने अभी दिल में डाल दिया आप लोगों के खातिर। तो ऐसे अलार्म लगाएं तो इंशाल्लाह जाग ही जाएंगे। रात को बहुत देर तक सोने की आदत जो है वो बहरहाल अच्छी तो नहीं है, हम सबकी भी अनफॉर्चुनेटली बनी हुई है, लेकिन देर से सोएंगे तो उठना जो है वो उतना ही मुश्किल होगा, तो सुहूर का टाइम जो है वो निकल जाएगा। तो जल्दी सोने की कोशिश करें, तरावी के बाद जो है वो कोई ज़रूरी बातें हैं उनको बस मुकम्मल करके जल्द से जल्द जो है वो सोने की कोशिश करें। रात को जागने और दिन को सोने, ये अल्लाह ताला के निज़ाम को पलट देने की यानी मज़मूम आदत है, मज़मूम कोशिश है, तो इससे जो है ना वो फ़ायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा हो जाता है। बज़ाहिर तो फ़ायदा नज़र आ रहा होता है कि हाँ अभी रातों को जाग रहे हैं, रमज़ान मुबारक के बरकतें समेट रहे हैं, लेकिन कोई बरकतें शरकतें नहीं समेट रहे होते क्योंकि ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है, सुन्नत के ख़िलाफ़ बरकतें हो ही नहीं सकती। तो कोशिश करें कि जल्दी सो जाएं और फिर दिन में भी थोड़ी बहुत नींद पूरी कर लें, क्योंकि रमज़ान मुबारक में जो है वो बहरहाल रात शॉर्ट हो ही जाती है तरावी के बाद। अच्छा, रोज़े के जो जो वो उनवानात हैं मसाइल के, तो उसमें किताब के अंदर जो रोज़े का बयान शुरू होता है, तो उसमें तो सबसे पहले उन्होंने फ़ज़ाइल लिखे हैं, फ़ज़ाइल के बाद जो है रोज़े की तारीफ़ वो हो चुकी थी, क्लास में भी डिस्कस, फिर रोज़ा किस पर फ़र्ज़ है, ठीक है। तो बालिग और आकिल यानी जो अपने होश व हवास में हो, सेंसिबल हो इंसान, उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है, जो मजनून दीवाना है उसके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है और नाबालिग के ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। अलबत्ता जो बच्चे होते हैं वो जब इस उम्र तक पहुंच जाएं कि वो एक दिन का रोज़ा बर्दाश्त कर सकें, जो कि अमूमी तौर पर 6 से 7 साल की उम्र में बच्चे जो हैं वो रोज़ा रख सकते हैं, पूरे 30 दिन का उनसे मत रखवाएं, लेकिन कुछ कुछ दिन के रोज़े उनसे रखवा लेने चाहिए, खुसूसन सर्दी के मौसम के अंदर जब रोज़े आ रहे हैं तो फिर और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो 7 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, इसको जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्करेज ना करें, ठीक है, कि नहीं तुम्हें कुछ हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं उसको रखने दें, उसकी पूरे 30 दिन की ना रखने दें, लेकिन उसको भी इसका टेस्ट लेने दें। और अगर वो शौक दिखा रहा है, बेशक अपने साथियों से सुन करके, साथियों की वजह से वो शौक दिखा रहा है या दिखा रही है, तो ये उसकी बचपन की उम्र का तकाजा है। तो इसको जो है ना वो इस तकाजे को दबाने की जरूरत नहीं है, उसको रोज़ा रखने दिया करें। इस तरह से आदत बनती है और फिर 8-9 साल की उम्र में जो है माशाल्लाह बच्चे पूरे पूरे रमज़ान के रोज़े भी रखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उस वक्त बालिग नहीं हुए होते, बालिग तो जा करके कोई 10 साल में हो रहा है, कोई 11, कोई 12, लड़के 1.5 में भी होते हैं, तो उस वक्त उनके ऊपर फ़र्ज़ होगा। लेकिन अगर पहले से आदत ना दिलवाई नमाज की, रोज़े की, तो एकदम से जो है ना वो इंसानी बदन जो होता है वो चीज़ के काबिल नहीं हो जाता। तो ऐसा नहीं होगा कि अब आज बालिग हुए हैं और उसके बाद जो है ना वो नमाजें पढ़ना शुरू कर दें, पहले कोई नमाज नहीं पढ़ी थी, ऐसा नहीं होता। इंसान का मिजाज, तबीयत अल्लाह ताला ने आदत के तहत बनाई है। आदत के तहत जो उसकी आदत होगी वो वैसे ही अमल करेगा, और अगर उसकी आदत वो नहीं होगी तो फिर वो अमल नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने भी 7 साल की उम्र से नमाज को कहने का जो हुक्म दिया है तो वो आदत बनाने के लिए दिया है। फर्ज नहीं होती नमाज 7 साल की उम्र से, ना 10 साल की उम्र में। वही जो है वो रोजे का भी मामला है। इस किताब में भी लिखा है कि लड़का लड़की जब रोजा रखने काबिल हो जाए तो उनको भी रोजे का हुक्म करें। ठीक है, 10 बरस की उम्र में हो जाए तो मार कर रोजा रखवाएं, तो मार कर रोजा रखवाने का हम तो नहीं कहते ना, आज के दौर के मशायख जो है वो मारपीट वगैरह का बिल्कुल भी नहीं कहते, लेकिन मकसद ये है कि पाबंदी करवाएं। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि अगर वो इधर उधर से पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको निकलने ना दें। ठीक है, बल्कि उनको जो है वो अपने साथ उठाएं और साथ बिठा करके सेरी करवाएं और फिर जो है वो उनको रोज़ा रखवाएं, साथ साथ जो है वो तरगीबी बात जो है वो भी करते रहें। अच्छा, ये जो मार के रखवाने की ज़रूरत पड़ती है ना अगर, ठीक है ना, तो उसकी भी एक रीज़न होती है ना, वो क्यों मार करके रखवाने की ज़रूरत पड़ रही है, उसकी वजह ये होती है कि दीन के और ईमान के और इबादात के खिलाफ माहौल के अंदर जो है ना वो पल बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो चूंकि उनका माहौल जो है वो खराब होता है और जिसके लिए जिम्मेदार जो है वो अमूमन वालिदैन खुद ही होते हैं, तो जब माहौल आपने उनको इसके खिलाफ दिया हुआ है तो फिर तो उनका नफ्स नहीं चाहेगा ना नमाज पढ़ना, उनका नफ्स नहीं चाहेगा रोजा रखना। ठीक है ना, तो अब उसका हल जो है वो आपने अच्छा निकाला कि जी आप जो है वो उसको मारना शुरू कर दें। ठीक है, तो ये इसलिए नहीं है। ठीक है, ये जो मारने का जो हुक्म है ना, ये इसलिए नहीं है कि पहले आप बेड़ा गरक खुद करें, पहले आप माहौल खुद बिगाड़ें और उसके ऊपर जो है ना फिर उससे डिमांड्स करें कि तुम जो है वो नेक पवित्र बन जाओ, और जब वो नहीं बनना चाह रहा तो फिर आप उसको मारना शुरू कर दें। ये बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हदीस मुबारका में भी अगर मारने का है ना जिक्र तो वो बिल्कुल भी इस वजह से नहीं है, वो है उन एक्सेप्शनल केसेस के लिए, उन एक्सेप्शनल केसेस के लिए कि जो के अच्छे माहौल के बावजूद वो इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा माहौल आपने उनको दिया, आपने उनके लिए जो है वो इंतजाम किए कि ठीक है कि सब लोग जो है वो नमाज पढ़ रहे हैं, सब लोग जो है वो रोजा रख रहे हैं, और बुरे माहौल में उनके जाने के जो है वो आपने रास्तों को रोका। लेकिन कुछ इंसानी तबीयतें होती हैं जिसको कहते हैं ना शरारती तबीयतें। ठीक है ना, जैसे बच्चों को देखा है ना आपने कि हर बच्चा एक लेवल का शरारती नहीं होता, कुछ बच्चे जो है वो अच्छे खासे ठीक ठाक होते हैं और गुजारा हो रहा है, थोड़ा बहुत शरारत जो है वो हर बच्चा कर रहा होता है, लेकिन कुछ बच्चे आप देखेंगे कि वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी शरारती होते हैं। ठीक है ना, अब वो हर अच्छी जगह पर भी शरारत का जो है ना कोई निकालेंगे, तो अब ऐसे लोगों के साथ क्या मामला करना करना पड़ता है, ऐसे लोगों को फिर जरा जबरदस्ती से उनको रोकना पड़ता है। ठीक है ना, जबरदस्ती से रोकना पड़ता है। तो ये जो मारने का हुक्म है ना, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बंदे को जो है मारना शुरू कर दें, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी तरफ से जब काम अच्छा कर लिया, अच्छा माहौल दे दिया, शरारत के मौके जो है वो आपने बंद कर दिए, लेकिन फिर भी तबीयतन जो है वो शरारत कर रहा है, किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, किसी को मार रहा है। अब सख्ती करनी है, अब सख्ती करनी है, छोड़ना नहीं है कि जाओ जाओ जिसको जी चाहे मारो, है? जाओ जो चीज चाहे जा करके तोड़ो, ठीक है ना, जिसकी चीज जो है वो खराब करनी चाहो खराब करो, क्योंकि तुम हो ही ऐसे, छोड़ दो भाई उसको। नहीं, ये हमारा दीन इसकी इजाजत नहीं देता, हमारा दीन इसकी इजाजत नहीं देता। अब आपको फोर्सफुली ऐसी तबीयतों को रोकना पड़ेगा। लेकिन ये जो हमने तमाशे बनाए हुए हैं कि पहले हम जो है वो समंदर में धक्का देते हैं और फिर बच्चों से तवक्को करते हैं कि जी आपने गीला नहीं होना है, अगर गीले हुए तो मैं डंडा लगाऊंगा तुम्हें, राइट, अगर गीले हुए तो मैं तुम्हें मार पीट करूंगा, ठीक है ना। ये हमारे बनाए हुए तरीके हैं जिसका कि हमें खुद सजा मिलेगी, हम बचेंगे नहीं है सजा से, बल्कि मिल रही है सजा, मिल रही है सजा, ठीक है। तो बालिग और आकिल के ऊपर रोजा फर्ज होता है, और जो बच्चे होते हैं उनको आदत दिलवानी होती है, और आदत दिलवाने का मकसद खाली ये नहीं होता कि अपने साथ बिठा करके जो है वो ये करवाएं, बल्कि उनको बुरे माहौल से और जो इसके खिलाफ जाने वाली चीजें होती हैं ना, उनसे फिर उनको बचाना भी, ये भी माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। और अगर आपको नहीं आता कैसे बचाना है तो फिर आप पूछें, आप सीखें, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप सीखें कैसे बचाना है बुरे माहौल से, ठीक है, वरना फिर सजा के लिए तैयार रहें, ठीक है ना। फिर आप आगे से कंप्लेन ना कीजिएगा कि बुकराती बन गया है और अफलातून बन गया है, और ना मेरी सुनता है ना किसी और की सुनता है, ना ये है ना वो है, ठीक है, फिर आप कंप्लेन ना कीजिएगा, ठीक है, इसको कोई फायदा नहीं होगा आपको। बहरहाल, रोजे का वक्त जो है वो सुबह सादिक से शुरू होता है और आपको पता है कब वो खत्म हो जाता है। खाने पीने का जो इंतजाम होता है अफ्तार के अंदर, तो उसमें भी थोड़ा सा सेहत वगैरह का भी ख्याल रख लेना चाहिए। एकदम से जो है ना वो, यानी कई घंटे भूखे रहने के बाद जो हम विद इन 10 मिनट्स अपने आप को बिल्कुल इन्फ्लेट कर लेते हैं ना, जिस तरह किसी बलून को इन्फ्लेट किया जाता है, एक साथ फूके मार मार करके उसको फुला लिया जाता है ना, तो इस तरीके से जो हम एक साथ फूके, यानी अपने अंदर उंडेल उंडेल करके चीज़ों को हम इन्फ्लेट कर लेते हैं, तो इसका बहुत मनफी असर होता है, ठीक है, खुसूसन पकौड़ों और शरबत के गिलास का जो है वो सेहत के ऊपर बहुत बुरा असर होता है। आज से कुछ सालों पहले कोई चीज़ हमारे पास आई थी इसके मुतालिक, तो हमने शेयर भी करी थी अपने ग्रुप्स के ऊपर, कि जो रूह अफजा से जो है ना, रूह को कोई अफजाइश नहीं मिल रही होती, बल्कि उससे जो है ना वो प्योर सिंपल वाइट शुगर जो है वो खूब सारी जो है वो हमारे अंदर जारी होती है, और वो जितने टाइम भूखे रहने के बाद जारी होती है, तो उसके फिर अलग ही एक्स्ट्रा नेगेटिव असरात होते हैं। रमजान मुबारक के रोजे के बयान में मजीद है कि रोजे की नियत क्या है। तो भाई रमजान मुबारक जो है ना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने लिए मुख्तस कर लिया है, ठीक है ना, जैसे पिछली क्लास में भी सुना था ना हदीस मुबारक से, कि ये अल्लाह का महीना है, तो अब इस महीने को जो है ना वो हम अपनी मर्जी से फिर कोई और महीना नहीं बना सकते। क्या मतलब इसका? मतलब ये है कि इस महीने में आप जो भी रोजा रखेंगे ना, वो रमजान मुबारक का फर्ज रोजा ही होगा। इस महीने के 30 दिन हो या 29 दिन हो, इसके अंदर आप कजा के रोजे रख ही नहीं सकते, इसके अंदर जो है ना वो आप नजर के रोजे रख ही नहीं सकते, इसके अंदर आप कोई नफली रोजे रख ही नहीं सकते। जो भी रोजा आप रखेंगे वो रमजान मुबारक का रोजा ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो अल्लाह का जो फैसला है वो हमारी नियत के ऊपर गालिब आ जाए, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि नहीं मैं कदा रोजे रखूं, अल्लाह चाह रहा है कि ये मेरा महीना है, ये इसमें मेरी चलेगी, ठीक है, तो अल्लाह ही की चलेगी, हमारी नहीं चलेगी। तो रोजे की नियत जो है वो फिर ऐसी है कि इसमें सिर्फ रमजान मुबारक की ही रोजे रखे जा सकते हैं। अच्छा, कब तक की जा सकती है, ये तफसील भी किताब में आपको मिल जाएगी। अगर नियत ने, यानी कुछ खाया पिया ना हो, तो दिन को ठीक दोपहर से 1 घंटा पहले रमजान के रोजे की नियत कर लेना दुरुस्त है, ठीक है। तो अगर नियत नहीं भी थी ना कि मैं आज रोजा रखूंगा, कुछ गोल शोल करने की नियत थी, तो भी अगर कुछ खाया पिया नहीं है तो इस वक्त तक जो है वो, यानी अक्सर दिन आपका रोजे की नियत के साथ गुजर जाए, तो अल्लाह ताला उम्मीद है कि कबूल फरमा लेंगे, हालांकि पहले आपकी नियत नहीं थी रोजा रखने की, फिर भी। अच्छा, रमजान में किसी और रोजे की नियत मोतबर नहीं है, अभी हमने ये बात सुन ली। अच्छा, व्हाट एल्स टू वॉच आउट फॉर, चांद देखने के बयान पे जो बात जरूरी थी वो हमने पिछली क्लास में कर ली थी कि उसमें खामखा था चांद के ऊपर एतराज नहीं करना चाहिए, बस जो हमारे शामत अमाल की वजह से अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत कर दिए हैं ना, तो उन हुक्मरानों ने चांद की जो भी तारीख ऐलान कर दी है, बस अल्लाह ताला से माफी मांगते हुए उसको कबूल कर लें। आगे पीछे उल्टी सीधी बातें करने का कोई फायदा नहीं है, गुनाहों से तौबा करेंगे तो अल्लाह ताला शायद हमें अच्छे हुक्मरान हमारी जिंदगी में अता फरमा दें, ठीक है ना। लेकिन अब जो कर दिए हैं ना, तो वो अब उस उल्टी सीधी बातें करने का कोई फायदा नहीं, खामखा जो है ना वो जुबानी जिहाद है, जुबानी जिहाद करने का इन हुक्मरानों के खिलाफ, कि उनका उनके चांद के ऐलान को बस नहीं मानना, राइट, और बाकी सारी चीजें माननी है, बस चांद का ऐलान जो है ना उसके ऊपर एतराज करना है, ठीक है ना। तो ये इस किस्म की बेवकूफियां जो हैं ये हमें बंद कर देनी चाहिए। तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह इस रमजान मुबारक के महीने में हमें बेवकूफियों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, ठीक है। ये भी एक दुआ है जो शायद आपने पहले नहीं मांगी होगी, तो अब गुजारिश है कि ये वाली दुआ भी अपनी दुआ में शामिल कर लेते हैं, तो बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, सेहरी खाने और इफ्तार करने का बयान। तो सेहरी खाना जो है वो सुन्नत है, कहते हैं कि जी भूख नहीं भी लगी हो ना तो कम से कम 2-3 खजूरें ही खा लें, तो खजूरों को सेहरी के अंदर शामिल करना, ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह सीखा था और इससे बड़ा फायदा होता है। और चीज़ें ना भी खा रहे हो तो खजूर कम से कम एक जो है ना वो सेहरी के अंदर ज़रूर से खा लें, ठीक है। बगैर सेहरी का रोज़ा रखा जाए, अगर रात को सेहरी खाने के लिए आँख ना खुली, सेहरी छूट जाने से रोज़ा छोड़ देना, ये बड़ी कम हिम्मती और बड़ा गुनाह है, ठीक है। तो एहतियातन सोने से पहले कुछ ज़रूर खा लें, लेकिन सेहरी को स्किप करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, और सेहरी अगर स्किप हो जाए किसी वजह से, किसी मजबूरी से, कमज़ोरी की वजह से उठ नहीं सके, तो भी रोज़ा जो है वो हरगिज़ कज़ा नहीं करना है। सारे साल भी अगर रोज़ा रखते रहेंगे तो रमज़ान मुबारक के एक रोज़े की जो कज़ा है ना वो बराबर नहीं हो सकेगी। अच्छा, ये फ़र्ज़ है, ये कोई मुस्तहब या नफली अमल नहीं है। ग़ुरूब के बाद भी इफ्तार में जो है वो जल्दी करनी है, यानी शियाओं की तरह नहीं 15 मिनट 20 मिनट के बाद इफ्तार करना है, लेकिन वो जो 3 मिनट की एहतियात है ना वो किताब में लिखी हुई है कि नक्शों में दिए गए सहर और इफ्तार के औकात में 3 मिनट की एहतियात ज़रूरी है, यानी सहरी नक्शे में दिए गए वक्त से 3 मिनट पहले बंद कर दें और इफ्तार जो है वो 3 मिनट ताखीर से कर लें। ये पाकिस्तान में, ये किताब भी वैसे पाकिस्तानी कंपाइल्ड है, तो वहाँ पे अगर इस किस्म का आगे पीछे हो जाता है, लेकिन हमने सऊदी अरब में कम से कम देखा कि इस चीज़ की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पाबंदी होती है, कि जो उनका टाइम होता है ना तो वो अजान जो है वो उससे एक लम्हा पहले नहीं शुरू हो रही होती, वो बिल्कुल सही टाइम पर शुरू होती है। बहरहाल ये इंतजामी मामला है। अच्छा, मीठी चीज़ से इफ्तार करना जो है वो खजूर से अच्छी मीठी चीज़ और कौन सी हो सकती है, अगर ना है, नहीं है अवेलेबल, तो पानी से इफ्तार करें, लेकिन नमक से जो इफ्तार करने का कुछ लोगों ने सवाब वाला अकीदा बनाया हुआ है, तो वो अकीदा गलत है, नमक का कोई ताल्लुक नहीं है इफ्तार के साथ। खैर, नमकीन चीज़ें खाएं, लेकिन उसको कोई सुन्नत वन्नत समझने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कज़ा रोज़े के बारे में हमने पिछली क्लास में थोड़ा सुन लिया था कि कज़ा रोज़ा जो है ना वो लगातार नहीं रखना होता, वो आप एक एक दो दो करके भी रख सकते हैं। ख़वातीन के ऊपर जो कज़ा रोज़े आते हैं, तो पहली बात तो उनको सबसे पहले तो ये कंफर्म करने की ज़रूरत है कि जिन रोज़ों को वो कज़ा कर रही हैं क्या वो सही समझ के कर रही हैं या सही समझ के नहीं कर रही हैं, ठीक है। हमारे यहाँ आप लोगों में से अक्सर ने सुना ही होगा कि जो हैज़ व नफास के मसाइल के ऊपर जब तफसीली गुफ्तगू हुई ख़वातीन में, और इस मसले को जो है वो अच्छे तरीके से जब पढ़ाया सिखाया गया, तो पता चला कि कितनी सारी मुसलमान दीनदार ख़वातीन जो हैं वो गलत रोज़े कज़ा कर रही हैं, ठीक है। तो कुछ तो ऐसे भी केसेस सामने आए कि उन्होंने जो, यानी पिछले कोई किसी ने कहा कि हमें कितने कितने सालों के रोजे जो है ना वो हमें फिर से कजा करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें जब रखने चाहिए थे उस वक्त हमने नहीं रखे, और जिस वक्त हमें नहीं रखने चाहिए थे हमने उस वक्त रख लिए। इस किस्म के मसले जो हैं वो बहुत इस वक्त आम हैं। तो ख्वातीन के लिए इस वक्त ये फ़र्ज़, इस वक्त तो क्या है, मतलब ये फ़र्ज़ इल्म है कि हैज़ व नफास के मसाइल जो है ना उनके बारे में वो बिल्कुल क्लियर हेडेड हों, बिल्कुल क्लियर हेडेड हों, क्योंकि इसके ऊपर उनकी नमाजों का दारोमदार है, इसके ऊपर उनके रोज़ों का दारोमदार है, इसके ऊपर उनके हज और उम्रे का दारोमदार है, ठीक है ना। और बहुत ही यानी इससे ज़्यादा और क्या क्या बताएं, ठीक है। वो एजम्पशंस के ऊपर मत गुजारें वक्त, क्या पता वो कितनी सारी जो है वो कदा करनी पड़े। मे बी द मीनिंग ऑफ सॉल्ट हियर इज एनीथिंग अवेलेबल, क्या मतलब, एक खास नमक चाटना जो है ना उसको कोई सवाब की चीज़ नहीं समझना, ये बेसिकली उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी नमकीन चीज़ जो पकौड़े होते हैं, नमकीन चीज़ होती है ना, समोसे जो है वो भी कोई मीठे समोसे, खैर मीठे समोसे भी होते हैं ना, नमकीन समोसे भी होते हैं, वो खाने को मना नहीं करता है, ये कह रहे हैं कि बस नमक से इफ्तार करने को कोई सवाब का बायस ना समझे। अच्छा, बालिग नाबालिग बच्चे बच्ची जो आदत बनाने के लिए रोज़ा रख रहे हैं, तो उनका अगर कोई रोज़ा कज़ा हो गया, मतलब तोड़ना पड़ जाए, उनकी तबीयत ख़राब हो जाए, कोई वजह हो जाए, लेकिन वो नाबालिग थे, तो अब उनकी जो है ना वो कज़ा वगैरह रखवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, और क्या बताएं, कज़ा की नियत में रमज़ान मुबारक के अंदर तो कज़ा आप रखेंगे भी नहीं, ना आपने कफ़ारे रखने हैं, तो जब रमज़ान मुबारक के बाद किसी को खुदा न खास्ता कज़ा रोज़े रखने की ज़रूरत पेश आए, या कफ़ारे की या रोज़े रखने की ज़रूरत पेश आए, तो फिर उनके लिए ये मसला है कि सुबह सादिक से पहले पहले नियत करना ज़रूरी है। अगर सुबह सादिक होने के बाद नियत की तो कज़ा सही नहीं हुई, बल्कि वो रोज़ा नफिल रोज़ा हो गया, कज़ा का रोज़ा फिर से रखना पड़ेगा, ठीक है। और कफारे के रोजे का भी यही हुक्म है कि रोजे का वक्त शुरू होने से पहले पहले नियत कर ले, रात से नियत करना चाहिए, अगर सुबह होने के बाद नियत की तो कफारे का रोजा सही नहीं हुआ, ठीक है। तो रमजान मुबारक में तो जो भी आपने नियत करनी है वो रमजान का रोजा ही बनेगा, लेकिन रमजान के बाहर जो है ना जो रोजे रखे जाते हैं, तो उनके अंदर एक्सप्लिसिटली नियत करनी लाजिम है कि मैं कौन सा वाला रोज़ा रख रहा हूँ, कज़ा का रोज़ा रख रहा हूँ, कफारे का रख रहा हूँ, या कोई नफली रोज़ा रख रहा हूँ, या नज़र का जो मैंने माना हुआ था कि मेरा फलाना काम हो जाएगा तो मैं रोज़ा रखूँगा, तो वो नज़र के रोज़े की भी एक्सप्लिसिटली नियत करनी पड़ेगी। अच्छा, क्या रखा आपने, एज आई रिमेंबर देयर इज अ हदीस ऑन विजिटिंग समवन दैट वी आर ओनली अलाउड टू आस्क फॉर वाटर एंड सॉल्ट, एंड उलमा कंक्लूड दैट सॉल्ट इज फूड हियर, सॉल्ट इज फूड हियर। तो भाई वो यार किसी को विजिट करने की बात हो रही है, यहाँ पर रोजे की बात हो रही है जी, यार वो निकल नहीं रही है ज़्यादा मेरी वॉइस शायद इस वजह से। नज़र के, चलिए कोशिश करता हूँ ज़रा ज़ोर से बोलने की। नज़र के रोज़े का बयान, ये भी रमज़ान से इसका ताल्लुक़ नहीं है, नफिल रोज़े का बयान इसका भी रमज़ान मुबारक से ताल्लुक़ नहीं है, मकरूहात व मुफसदात का बयान ये डेफिनेटली समथिंग टू वॉश आउट फॉर, क्योंकि कोई ऐसा काम आपने कर लिया कि जिससे रोज़ा नहीं टूटता और आप समझ रहे हैं कि रोज़ा टूट गया, तो इसमें सबसे अहम बात तो यही है कि अगर भूले से कोई ऐसा अमल कर लिया, खाना पीना या जिस अमल से रोज़ा टूट जाता है, भूले से कर लिया तो उसका रोज़ा नहीं टूटता, अगर भूल कर पेट भर कर भी पानी पी लिया, ठीक है, तो रोज़ा नहीं टूटा, तो बस कंटिन्यू करें अपने रोज़े, ठीक है। और अब ये भूले से पिया था कि जानबूझ के पिया था, तो ये भी किसको पता है, मौलाना साहब को, शेख साहब को, राइट, नहीं शेख साहब को कुछ भी नहीं पता, चाहे वो कितने ही बड़े अल्लाह के वली हों, उनको नहीं पता कि आपने जो है वो भूले से वाकई पानी पिया था या जानबूझ के पानी पी गया पिया था, कितने बड़े अल्लाह के वली हो जाए उनको नहीं पता, एंड डोंट इवन थिंक कि उनको पता है, पता होगा, ठीक है ना। उसके ऊपर बिल्कुल भी तकिया करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने मौलवी साहब को उल्लू बना लिया या पीर साहब को जो है मैंने बेवकूफ़ बना लिया, तो अब जो है ना वो कोई मसला नहीं है। नहीं, यहाँ पे मसला कोई है ही नहीं, ना पीर साहब का मसला है ना मौलवी साहब का मसला है, सारा का सारा मसला जो है वो अल्लाह ताला के साथ हमारा मामला है। ठीक है, तो अल्लाह ताला को तो पता है कि भूले से कर रहे हैं कि जानबूझ के कर रहे हैं, तो भूले से कर रहे हैं तो बस कंटिन्यू करें, और अगर जानबूझ के कर रहे हैं तो फिर कफारे के लिए तैयार हो जाएं, और फिर वो एक अलग चैप्टर है पूरा का पूरा। रमजान में अक्सर लोग उम्रा करते हुए रोजा नहीं रखते हैं, इसके बारे में क्या हुक्म है? ये तो बड़ा खतरनाक हुक्म है, ये मुफ्ती हजरात ही आपको बताएंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं मुफ्ती नहीं हूँ। ठीक है, तो बहरहाल आजकल जो यानी ठंड वाले माशाल्लाह हमारे सफर होते हैं, और जो आसानियां जो है उम्रे में होती हैं, उम्रा भी जो है वो रात को भी किया जा सकता है, तो रोज़ा छोड़ने की वैसे तो कोई तुक नहीं। हमने तो अपने मशायख को देखा है कि वो सफ़र करते हैं उम्रे के लिए और वो रोज़ा भी साथ रखते हैं, इल्ला ये कि उनके ऊपर कोई बहुत ही बड़ी बीमारी वाली मजबूरी अगर हो, वो एक अलग सिचुएशन होती है, लेकिन अदरवाइज सफ़र की वजह से रोज़ा नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि कोई तुक नहीं बनती आजकल सफ़र की वजह से रोज़ा छोड़ने की। गर्मी के मौसम में भी हम जो है ना वो एसी से बाहर तो हम एक कदम चीखे निकल जाए हमारी गर्मी के मौसम में भी। ठीक है, हम सऊदी अरब की गर्मी तो हम तो ठंड ठंड में सफ़र करते हैं, ठंड ठंड में सारे काम करते हैं, तो रोज़ा लेकिन बहरहाल गुंजाइश है। तो अब जो अगर नहीं रख रहा है कोई, तो अब उसके पीछे मत पड़े, कोई ज़रूरत नहीं है उसके पीछे पड़ने की, नहीं तुम क्यों नहीं रख रहे हो, अपनी बात करें बस। ठीक है ना, तो अपनी बात यह है कि भाई अगर हम रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं रख रहे हैं, ठीक है, और अगर नहीं रख सकते हैं तो बस ना रखें। बस ये इस तरह के कुछ मसले ऐसे होते हैं ना कि जिसमें अंग्रेजी का एक बेहतरीन मुहावरा जो है ना वही दिल में आता है कि जस्ट गेट इट ओवर एंड डन विद, डोंट मेक इट एन इशू। ठीक है ना, आपको भी पता है कि क्या मसला है, आपको भी पता है कि कितनी गर्मी है, आपको भी पता है कि आपकी कितनी हिम्मत है। जब शरीयत के अंदर कोई रुख्सत है, तो अगर आपको इस बात का एहसास है कि आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, तो भी रुख्सत को इस्तेमाल करें। ठीक है ना, और अगर आपको पता है कि नहीं ऐसा कोई मसला नहीं है और गुजार सकता हूँ मैं, तो फिर आप रुख्सत की ज़रूरत नहीं है, जो बस रख सकते हैं तो रख लें। अजीमत भी तो एक चीज़ होती है ना, एक चीज़ होती है अजीमत, एक चीज़ होती है रुख्सत। तो अपने लिए अपने आप को हलाकत में डालना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है दीन के अंदर, उधर रुख्सत इस्तेमाल करें जब है शरीयत के अंदर रुख्सत। और अगर हलाकत का कोई दूर दूर तक तसव्वुर ही कोई नहीं है आपके साथ, तो फिर भाई कोशिश कर लें अजीमत वाली। ठीक है, बाकी ये कि दूसरा क्या कर रहा है तो उसको मसला जो है वो बता दें, लेकिन अगर वो आपकी बात नहीं मान रहा तो अल्लाह के हवाले, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, इशू मत बनाए इन सब चीज़ों को, उसका मामला अल्लाह के साथ है, आपका मामला जो है वो सिर्फ बात को कन्वे कर देना है, यही हमारा हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, का एक मसला है कि हलक के अंदर मक्खी चली गई या धुआं खुद चला जाए या गर्दोगुबार चला जाए तो रोज़ा नहीं टूटता। ठीक है ना, माशाल्लाह मक्खी भी खा लेंगे रोज़ा नहीं टूटेगा, अलबत्ता कसदन मक्खी खाने से रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है, तो लिखा है कि कसदन ऐसा करने से रोज़ा टूट जाएगा, यानी मक्खी और धुआं दोनों चीज़ों से। तो अच्छा, थूक निकलने से रोज़ा नहीं टूटता, ये एक बहुत बड़ा अक्सर लोगों को जाहिर है थूक निकलना, वो खास तौर पर रोज़े में और ज़्यादा थूक आता है, क्योंकि वसवसा होता है असल में, ये आ नहीं रहा होता, वो ला रहे होते हैं वसवसे की वजह से, तो थूक निकलने से रोज़ा नहीं टूटता। मिसवाक से दांत साफ करना दुरुस्त है, अगरचे जवाल के बाद हो, चाहे मिसवाक सूखी हो या उसी वक्त की तोड़ी हुई ताज़ी हो, अगर नीम की मिसवाक है और उसका कड़वापन मुंह में मालूम होता है तब भी मकरूह नहीं है। ठीक है, ब्रश करने से भी टूटेगा ना, ब्रश करने से, ब्रश जो है ना वो टूथपेस्ट को मना करते हैं, क्योंकि टूथपेस्ट जो है ना ये एक बिल्कुल एक्स्ट्रा चीज़ है, और ये अगर पेट में ना जाए तो नहीं टूटता, लेकिन बहुत ज़्यादा एहतमाल होता है कि टूथपेस्ट जो है ना वो अंदर, रोजे में तो खासकर घुसेगा ना, शैतान भी आकर के शायद उसको पुशन कर दे ज़रा ज़्यादा, तो टूथपेस्ट जो है ना उसको तो मना किया जा रहा होता है बस बाकायदा रोजे के अंदर, लेकिन मिसवाक उसमें इवन अगर उसका कड़वाहट भी जा रही है ना तो उससे उसको यानी मकरूह भी नहीं है। अच्छा, खुद ब खुद अगर उल्टी हो जाए, तय हो जाए तो रोज़ा नहीं टूटता, थोड़ी सी तय आए फिर खुद ही हलक में लौट गई तब भी रोज़ा, ये बहुत सारे मसाइल हैं, अब ये हम इस वक्त में कवर भी नहीं कर सकते। जैसे कि पिछली क्लास में बताया था कि मकसद ये था कि वॉच वॉट टू वॉच आउट फॉर, ये किताब में मौजूद है, बहुत अच्छे से तरतीब दी हुई किताब है, और भी बहुत सारी किताबें हैं लेकिन ये हमारे सामने एक अच्छी मिसाल है, इसको जो है वो अपने मुताले में रखना चाहिए, अपने कम से कम अपने लाइब्रेरी में तो रखना चाहिए, या डाउनलोड करके अपने फ़ोन में अपने लैपटॉप के ऊपर रखना चाहिए। और कोई ऐसा अनयूजुअल मसला आए, खुद देख लें, अगर नहीं समझ में आ रहा तो उनमा से पूछ लें। कफ़ारा वाजिब होने के मसाइल भी हमने पढ़ लिए थे। अच्छा, एक चीज़ जो है वो जो करनी थी इस क्लास में, सॉरी वक्त जो है वो थोड़ा आपसे एक्स्ट्रा फिर से लेना पड़ेगा। ज़कात को थोड़ा सा हम टच करना चाह रहे थे, ठीक है? तो एडमिन साहब, अगर आप ज़कात वाले टेबल्स जो है वो शेयर कर लें स्क्रीन के ऊपर, तो ज़कात और रमज़ान का वैसे आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? ज़कात और रमज़ान का आपस में कोई रिश्ता नहीं है, सही है? बस इस वजह से ज़कात के मसाइल रमज़ान मुबारक के करीब जो है वो बयान कर दिए जाते हैं। सिर्फ उसकी रीज़न ये होती है कि अक्सर मोमिनों ने, ठीक है, अक्सर ईमान वालों ने अपने ज़कात को जो है ना वो किसी ना किसी तरीके से रमज़ान मुबारक के साथ जो है ना वो जोड़ा हुआ होता है, और वजह उसकी खाली ये होती है कि याद रखना आसान हो जाता है इस तरीके से, ठीक है? तो चूंकि रमज़ान मुबारक अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़ोर शोर के साथ आता है हमारे मुआशरे में, तो वो ज़ोर शोर जो है ना फिर ज़कात भी याद दिला देता है, तो वरना अदरवाइज़ कोई ताल्लुक नहीं है रमज़ान और ज़कात का। तो बस इसी नीयत से कि चूंकि अक्सर लोग निकालते हैं ज़कात, तो हम ज़कात के मसाइल वगैरह तो तफसील के साथ यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने का कोई इरादा नहीं रखते। इसके लिए मुफ्ती हजरात अल्लाह ताला ने बनाए हैं, अल्लाह उनके उम्रों में बरकत अता फरमाए, उनके वक्त में बरकत अता फरमाए कि वो मौजूद हैं और हमारे मसाइल का जवाब दे दिया करते हैं। तो तफसीली मसाइल वगैरह तो सब आपने उनसे ही जा करके पूछने हैं। अलबत्ता जो सबसे सादा बहुत ही आसान आखिर में, बल्कि मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की जो किताब आपके सामने, जिसका टाइटल पेज ज़रा दिखा दें इनका, क्योंकि पिछले सालों में तो हमने शेयर भी करी है ग्रुप के ऊपर, इस साल अभी तक शेयर नहीं करी है। ये इनका इनकी एक छोटा सा किताबचा, ज़कात किस तरह अदा करें, मुफ्ती तकी उस्मानी दाम बकातों का। तो इसके बिल्कुल आखिर में ना इन्होंने दो टेबल्स जो हैं वो प्रिंट किए हुए हैं दारुल उलूम कराची के मुफ्ती हजरात के, दारुल इफ्ता के तरतीब दिए हुए। तो ये एक बेहतरीन मिसाल है हमारे सामने जिसको फॉलो करते हुए हम अपनी ज़कात कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें, अब नेक्स्ट पेज, नक्शा बराए अदायगी ये ज़कात, हाँ जज़ाकुम अल्लाह। तो इसमें देखें, एक एक टेबल ये है एक पेज के ऊपर, ये जो है ना ये है बेसिकली काबिले ज़कात असासे, ठीक है? जिसको के अंग्रेजी ज़ुबान में कहा जाएगा ज़कातबल एसेट्स, यानी उन एसेट्स, उन असा वो असासे, वो एसेट्स हमारे के जिनके ऊपर ज़कात निकालनी होती है, ठीक है? तो ये काबिले ज़कात असासे, ये इसकी तकरीबन सारी सूरतें मेरे ख्याल में यहाँ पर 15 सूरतें लिख दी गई हैं, जिसमें सबसे पहला है कि सोना, ख्वा किसी भी शक्ल में हो, ठीक है, यानी जेवर की शक्ल में हो, आपके कॉइन्स की शक्ल में हो, आपके बिस्किट्स की शक्ल में हो, जिस भी शक्ल में, सोना जो है ना ये तो यानी इसकी हर फॉर्म जो है ना उसके ऊपर ज़कात है। अब इसमें सबसे अहम बात, दूसरी अहम बात उसमें ये होती है कि ज़कात जो है ना वो जिसकी मिल्कियत है ना उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, ठीक है? तो अब ये सोना जो है वो अगर लड़के की मिल्कियत है, शौहर की मिल्कियत है, तो शौहर के ऊपर उस सोने की ज़कात फ़र्ज़ है, और अगर ये बीवी की मिल्कियत है तो बेगम साहबा के ऊपर इसकी ज़कात फ़र्ज़ है, ठीक है ना? शौहर के ऊपर बीवी के ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, बीवी का सोना लेकिन ज़कात जो है वो शौहर अदा करे, ये नहीं है शरीयत के अंदर। लेकिन इस्तेहसानन, एहसान करते हुए शौहर अगर बीवी की ज़कात भी अदा कर दे तो वो ज़कात अदा हो जाती है, ठीक है? वो ज़कात अदा हो जाती है, ये अल्लाह का भी एहसान है और फिर शौहर का भी एहसान है, ठीक है, कि बेगम साहिबा की ज़कात उन्होंने अदा कर दी। वरना अगर वो कहें कि नहीं, तुम मेरा नहीं करती कभी, मैं क्यों करूं तुम्हारा, तो इखलाकन तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला के हैं वो कम अज़ कम गुनहगार नहीं होंगे इस बात के ऊपर, ठीक है? तो बेगम साहबा को कम से कम ये एहसान मान लेना चाहिए कि शौहर साहब जो है उनकी ज़कात अदा कर दिया करते हैं। उसी तरह अगर शौहर साहब का सोना था, बेगम साहब के पास, साहिबा के पास जो है वो कैश है, तो बेगम साहिबा अगर अदा कर दें शौहर की तरफ से तो अदा हो जाएगी, ठीक है, लेकिन कोई वाजिब नहीं है उनके ऊपर। तो सोना, अच्छा, मिल्कियत डिफाइन होना कितना ज़रूरी है, ठीक है। मिल्कियत डिफाइंड नहीं है तो आप ज़कात किस बेसिस पे अदा कर रहे हैं? आपको पता ही नहीं है आपकी मिल्कियत है क्या, आप पता नहीं, पता चला दूसरे की मिल्कियत जो है वो अपनी मिल्कियत समझ करके अदा कर रहे हैं, तो उससे आपकी मिल्कियत तो नहीं बन जाएगी वो। बेशक आप सारी ज़िंदगी ज़कात अदा करते रहें, लेकिन आपकी मिल्कियत नहीं बन जाएगी वो चीज़, ठीक है। तो मिल्कियत डिफाइन होना इंतहाई ज़रूरी है। फिर उसके बाद चांदी, ये भी ख्वाह किसी भी शक्ल के अंदर हो, चांदी के ऊपर भी ज़कात देनी वाजिब है, तो ये ज़कातबल एसेट्स में नंबर वन और नंबर टू हो गए। फिर उसके बाद माल तिजारत, यानी बेचने की हतमी नीयत से खरीदा हुआ माल, मकान, जमीन वगैरह। हतमी नीयत क्या मतलब? कि आप बिल्कुल क्लियर हैं अपनी नीयत के अंदर कि ये जो मैंने मकान खरीदा है ये मैं प्रॉफिट पर बेचूंगा, इसलिए मैंने खरीदा है। जैसे कुछ लोग जो हैं वो बाकायदा जमीन की खरीदो फरोख्त का बिजनेस करते हैं, ठीक है ना, इधर से ये ले ली, उधर से उधर बेच दी, उधर से ये ले ली, उधर बेच दी, ठीक है। तो ये है हतमी नीयत, क्लियर नीयत। तो जो भी माल, जमीन या मकान आपने बेचने की हतमी नीयत से खरीदा है, उसकी मालियत के ऊपर आप जकात देंगे, क्योंकि वो आपका सामान तिजारत है, क्योंकि वो आपका सामान तिजारत है, ठीक है। लेकिन हतमी नीयत नहीं है, बल्कि बस खरीद लिया, अभी मैंने फैसला नहीं किया कि ये मैं आगे बेचूंगा या मैं इसको रखूंगा या मैं इसके अंदर ऊपर अब मकान बनाऊंगा, रहूंगा, नहीं, कोई नहीं है, बस बस मैंने खरीद लिया है, ठीक है ना। अब ये भी वही पानी पीने वाला मसला, ठीक है ना, कि पानी पीने का फैसला जो है ना, कि आपने जानबूझ के पिया था कि आपने जो है वो अनजाने में पिया था, ये मौलवी साहब और पीर साहब ने नहीं डिसाइड करना, ये अल्लाह अल्लाह ने डिसाइड करना है, अल्लाह ने उसका हिसाब आपसे लेना है, हमसे लेना है, ठीक है ना। तो जिस तरह वहां पर एब्सोल्यूटली अल्लाह और बंदे का मामला है ना, उसी तरह यहाँ पर भी एब्सोल्यूटली अल्लाह और बंदे का मामला है, ठीक है ना। किसी पीर साहब को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी मुफ्ती साहब से जो है ना वो अपनी मनमर्जी का फतवा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। इस किस्म के खामखा की बेवकूफ़ियों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा मसला क्या होता है कि हम पहले ऐसा माहौल बनाते हैं कि जिसके अंदर जो है ना हम पूरे ढंडोरा पीटते हैं अपनी चीज़ों का, ठीक है ना, हम लोगों को अपने पीछे पड़वाते हैं पहले, और जब लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं तो फिर हम लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए मुफ्ती साहब के पीछे भागते हैं, ठीक है, फिर हम फतवा लेने की कोशिश करते हैं ताकि लोग मेरी जान छोड़ें, ठीक है। अब वो फतवा जो है ना, फिर हम अपनी मनमर्जी का फतवा ले रहे होते हैं झूठ बोल करके, ठीक है ना। तो डोंट पुट योर सेल्फ इन दिस सिचुएशन, डोंट पुट योर सेल्फ इन दिस सिचुएशन, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को जो है ना वो बोला नहीं करें लोगों के सामने कि मैंने तो जी ये माली तिजारत के लिए लिया है, और मैंने तो फोन, यानी इधर ढंडोरा पीट रहे हैं, उधर बैठ रहे हैं तो कोई बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो चलो जी अपने इन्वेस्टमेंट क्या कहते हैं पोर्टफोलियो, उसके बारे में जो है वो लोगों को बताना शुरू कर दिया, ठीक है। अब आप लोगों को बताएंगे, कुछ तो होंगे जिनका कोई वास्ता नहीं होगा आपके साथ, तो वो तो एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से उड़ा देंगे, लेकिन कुछ होंगे जिनका आपके साथ बड़ा वास्ता पड़ता होगा, अच्छा या बुरा, राइट, आपके फ्री के खैरख्वाह होंगे वो, या आपके जो है वो किसी मकसद से वो आपके खैरख्वाह बने हुए होंगे, तो अब वो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे हाथ धो करके, ठीक है ना। तो लोगों को मत पीछे पड़वाएं अपने, अपना मामला अल्लाह के साथ रखें, मसला सीखें, दीन सीखें, और फिर उसके ऊपर जो है ना वो अल्लाह के लिए अमल करना है, अल्लाह के लिए अमल करना है, ठीक है ना। और अल्लाह के लिए अमल करने का आसान रास्ता ये है कि लोगों में मशहूरी मत किया करें, लोग चीज़ों की, अपने अपनी चीज़ों की लोगों में मशहूरी मत किया करें, क्योंकि लोग जब आपके पीछे पड़ जाएंगे ना, फिर शैतान जो है ना वो आपको अल्लाह से मुआमला करने नहीं देगा, फिर उसके बाद फिर वो आपका मुआमला लोगों के साथ लगा देगा, और जब लोगों के साथ आपका मुआमला लग जाएगा, अब जो है ना वो अल्लाह ताला बिल्कुल पिक्चर में से निकल जाएगा आपकी, यानी आपकी दीन की पिक्चर में से अल्लाह ताला निकल जाएगा, और आप जो है ना फिर लोगों के हवाले हो जाएंगे, और फिर उसके बाद आप झूठे फतवों के पीछे भागते फिरेंगे, ठीक है। कुछ बात समझ में आई? सही। तो ये मामला पानी के ग्लास ही की तरह से है, ये आपका और अल्लाह के दरमियान का मामला है। तो लोगों को उल्टी सीधी बातें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उसी तरीके से आपने माल खरीदा है, माल तजारत खरीदा है, आपने दुकान खरीदी है, आपने जमीन खरीदी है, ठीक है ना। तो वो नियत के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ज़कात देनी है कि नहीं देनी है, ठीक है। मसला सीखें ताकि ऐसा ना हो कि अभी आपको पता ही नहीं कि अच्छा इस पर ज़कात भी देनी थी और आपने जो है ना वो हतमी नियत कर ली कि मैंने तो तजारत की, हालांकि कुछ पता है नहीं कि पता नहीं मैं तजारत कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बैठ करके नियत करके बैठे हुए हैं। तो भाई अगर कल जो है ना वो ज़कात के जब टाइम आएगा तो ज़कात भी देनी होगी। तो मसला बहुत सारे, हमें पता मसला पता नहीं होता, हम जो है ना वो गड़बड़ कर देते हैं पहले, फिर बाद में मसले का पता चलता है, अब जो है ना वो झूठ बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है ना। बड़े बड़े इस तरह के तमाशे करते हैं हम, और फिर जब मौका आता है तो फिर उसके बाद फतवों के पीछे भागते हैं। अच्छा, बैंक में जो जमाशुदा रकम है, यानी जो आपकी कैश है बैंक के अंदर डिपॉजिटेड है, तो वो ज़कातबल एसेट है। आपके पास मौजूदा यानी आपके वॉलेट में जो रकम है, आपके घर के अंदर जो लिफाफे शिफाफे आपने रखे हुए हैं, जो भी है वो सारी की सारी ज़कातबल एसेट है, ठीक है। तो जिस दिन भी आपने अपना तय किया हुआ है, जैसे फर्स्ट रमज़ान मुबारक, तो ये जी मेरे ज़कात का दिन है, तो उस दिन जो है ना, या उससे कम से कम एक रात पहले, ठीक है, अपने सारे लिफाफे, अपने सारे वॉलेट्स, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो खोल करके अपने सामने रखें और इन सबको जो है वो काउंट कर लें और एक जगह पे नोट कर लें, ठीक है ना। बाद में बेशक आप जो है वो कैलकुलेट मल्टीप्लाई बाय 0.25, 0.025 जो है वो बाद में करते रहिएगा, उसको एडअप जो है वो बाद में करते रहिएगा, लेकिन जो एक फिक्स्ड स्टेट है आपके ज़कातबल एसेट्स की, वो उस तारीख में नोट कर लें, ठीक है। क्योंकि जब ये तारीख गुजर जाएगी ना, अब जो है वो कुछ एसेट आ गया, कुछ एसेट निकल गया, तो उससे फिर ये स्टेट चेंज हो जाएगी आप, तो उसके हिसाब से फिर ज़कात भी आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ज़कात सही कैलकुलेट करने के लिए उस दिन का स्टेट होना ज़रूरी है। तो अगर फर्स्ट रमज़ान को आप करते हैं तो फिर 2-3 दिन रह गए हैं पहले से तैयारी कर लें कि जी मैंने करना है। अच्छा, सोने वगैरह चांदी वगैरह की जो है वो औरतों ने कभी किसी कोने में कोई घुसाया हुआ होता है, कभी कहीं पे जो है वो छुपाया हुआ होता है, कभी कहीं पे किसी दराज के अंदर जो है वो सोने की कोई चीज़ रखी हुई है, कभी किसी दराज में रखी हुई है, तो उनको ज़रा झंझोड़ना पड़ता है। खुद भी अगर वो सुन रही हैं तो खुद एहसास करें कि कहाँ कहाँ मैंने अपनी चीज़ें रखी हुई, ठीक है ना, या किसी और के घर रखवाई हुई है या किसी और लॉकर में रखवाई हुई है, तो भाई वो सारी की सारी ज़कातबल एसेट्स हैं। तो उनको जो है ना वो आपने यानी मेजर करना है उसको, उसकी उसकी क्वांटिटी जो है ना उसको, अच्छा उसको नोट डाउन करना है, ठीक है ना। अच्छा, इस पे एक और बड़ा मसला, ये पूरा तो टेबल हो ही नहीं सकेगा, वैसे भी आप पढ़ लीजिएगा बाद में, मैं खाली रियल लाइफ किस्म की आपको चीज़ें चंद बता रहा हूँ। तो वो ये है कि अब आप किसी दूसरे मुल्क में, ज़्यादातर लोग जो हैं वो रहते जो हैं सऊदी अरब में हैं या कहीं और अमेरिका में रह रहे हैं, कोई यूरोप में रह रहे हैं, तो भाई आपके पैसे जो हैं वो इंडिया में पड़े हुए हैं, आपके पैसे जो है वो पाउंड स्टर्लिंग के अंदर हैं, डॉलर के अंदर हैं, रियाल के अंदर हैं, दिरहम के अंदर हैं, तो उन सबको जो है ना वो आपको एक करेंसी में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो जिस दिन आप ज़कात कैलकुलेट करते हैं उस दिन जितनी करेंसी की जो रेट्स चल रहे हैं वो रेट्स भी अपने पास लिख लें, ठीक है, क्योंकि रेट्स भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं ना, ठीक है। तो वो रेट्स लिख लें, सोने की क्या वैल्यू चल रही है इस वक्त, उस दिन सोने की क्या वैल्यू है, ठीक है, पर ग्राम सोने की, पर ग्राम चांदी की क्या वैल्यू है, इसको भी नोट करना है, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि साथियों से इकट्ठे करके ग्रुप के ऊपर शेयर कर दें इन वैल्यूज़ को, पिछले साल भी की थी, शायद उससे पहले भी करी थी, तो इस दफा भी कोशिश करेंगे कि वो सोने की चांदी की करेंसी की ये सारी वैल्यूज़ जो है ना जिस दिन ज़कात कैलकुलेट करना है उस दिन की मालूम होनी, या कम से कम एक रात पहले की, क्योंकि चंद घंटों में ऐसा नहीं होता। उधार रकम जो आपको यानी अकाउंट रिसीवेबल्स जिसको कहते हैं, ठीक है, जिसके मिलने का गालिब गुमान हो, आप तवक्को कर रहे हैं कि वो आपको मिल जाएगी, ख्वाह वो नकद रकम की सूरत में हो या माल तिजारत बेचा है, अब आपको उसकी पेमेंट रिसीव, ये भी अकाउंट रिसीवेबल है, अभी पेमेंट आपको मिली नहीं है लेकिन आप उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि यू हैव ऑलरेडी डन द डील, ठीक है, तो वो भी आप नोट करेंगे ये पॉइंट नंबर 6 के अंदर। गैर मुल्की करेंसी मौजूदा रेट से, ये जो अभी आपको बताया। नंबर 8, कंपनी के शेयर्स जो कैपिटल गेन की नीयत से शेयर मार्केट में, जो लोग, मैं मुझे तो उनका पता ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको पता है उनसे आप पूछ लें कि कैपिटल गेन की नीयत से जो शेयर मार्केट के नीयत शेयर्स खरीदे होते हैं, तो उनकी पूरी कीमत, ठीक है, मौजूदा मार्केट वैल्यू के ऊपर, तो ये आपका ज़कातबल एसेट होगा। और फिर जो शेयर्स डिविडेंड की गर्ज से खरीदे गए हैं, उनमें कंपनी के नाकाबिले ज़कात असासे ऑपरेटिंग एसेट्स को आप माइनस कर सकते हैं, ठीक है। वो आपको आपको पूछना होगा फिर जिस कंपनी के आपने एसेट्स खरीदे हैं कि जी आपके ऑपरेटिंग एसेट्स की कितनी वैल्यू बनती है इन एसेट्स के अंदर से, तो उसको आप माइनस कर सकते हैं। जो सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं पाकिस्तान में, होते हैं NIT, FEBC, NDFC वगैरह, तो वो भी यहाँ पे ऐड करते हैं। किसी जगह अपनी अमानत रखवाई भी, रकम, सोना, चांदी, माल तजारत, ठीक है, तो है तो आपकी मिल्कियत ना, अमानत किसी और के पास रखवाई हुई है लेकिन अपनी मिल्कियत है, तो वो भी ज़कातबल एसेट है। कमेटी, बहुत सारे लोग कमेटी डालते हैं, BCB उसको कहते हैं लोग, तो जो अपनी जमाशुदा रकम आपने दी हुई है तो वो भी आपके ज़कातबल एसेट्स हैं, क्योंकि वो भी आपके अकाउंट रिसीवेबल्स हैं। BC अभी आपको मिली नहीं है लेकिन जो आपने वहां पे दी हुई है तो वो आपको मिलेगी ना, वो तो कम से कम आपको मिलेगी, तो वो ज़कातबल एसेट है, ठीक है। जो BC आपको 2 महीने बाद मिलनी है उसके ऊपर ज़कात नहीं निकालनी, लेकिन जो आपने अपना पैसा BC में दिया हुआ है वो ज़कातबल एसेट है। खाम माल जो मसनूआत बनाकर फरोख्त करने के लिए खरीदा गया है, ठीक है, जो रॉ मटेरियल, वो भी ज़कातबल एसेट है। तैयार शुदा माल का स्टॉक, चाहे वो खाम माल हो चाहे तैयार शुदा माल हो, दोनों चीज़ें ज़कातबल एसेट हैं। और कारोबार में शराकत के बकदर हिस्सा, ठीक है, जो आपने कारोबार में काबिल ज़कात असासों की मालियत मका नफ़ा, ठीक है, तो ये भी ज़कातबल एसेट है, ठीक है। तो ये सब तो आपने ऐड कर लिए, तो क्या निकला, कुल माले ज़कात की मालियत रकम की शक्ल, ये एग्जाम्पल 11,10,000 रुपए बने। अगले पेज के ऊपर इन्होंने अकाउंट पेबल्स की कुछ एग्जाम्पल्स लिख दी, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज अगर आप दिखा दें जातुल्ला साहब, तो वो रकम जो मिन्हा की जाएंगी यानी सब्ट्रैक्ट की जाएंगी इसमें से, वो कौन कौन सी हो सकती हैं। वाजिबुल अदा कर्जा, जो आपके ऊपर करंटली यानी जिस दिन आपने ज़कात कैलकुलेट करनी है उस दिन आपके ऊपर जो अकाउंट पेबल्स हैं, ठीक है, तो वो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सबसे पहले। अच्छा, मैंने ये चैट विंडो जो है वो काफ़ी देर के बाद अभी खोली है, तो वो पहला तो मैसेज जो है लिखा हुआ, उलमा यूजुअली डोंट एडवाइज यू टू परफॉर्म उमरा इफ इट इज इन पॉसिबल टू पास इन केस ऑफ ट्रैवल एंड एग्जर्शन, इवन दो देर इज सम स्कोप इन केस ऑफ ट्रैवल, बट स्टिल यू शुडंट कीप स्किप ए मैंडेटरी एक्ट फॉर ए नफिल, यू शुडंट स्किप ए मैंडेटरी एक्ट फॉर ए नफिल। जी, तो वो एडवाइस की हद तक तो है ना, बिल्कुल, मम्मी तो ये कह रहे थे कि भाई क्यों स्किप कर रहे हैं, बहरहाल एडवाइस ही की हद तक है ये, 1 साल में। अच्छा, उलमा जहन साजी के लिए ये बात करते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो सफ़र है ना, सफ़र जिसके अंदर के आपको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, ये बात भी याद रखें कि मजबूरी वाला सफ़र जो है ना, इसकी कोई कोई नहीं, कोई नहीं है इसके अंदर हुक्म, कि बस उस सफ़र में आप जो है फ़अद्दतुम मिन अय्यामिन उखर है, कि दूसरे अय्याम के अंदर आप जो है उसको पूरा कर लें, तो उसमें जो सफ़र जो है ना, वो सफ़र कोई मजबूरी वाला सफ़र नहीं है, कि जिसमें जो है ना, वो अगर आप सफ़र नहीं करेंगे तो आपको जो है वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, जान का नुकसान हो जाएगा, या माल का नुकसान हो जाएगा, या और कोई आपको इज्जत का नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा सफ़र अगर आप करेंगे रमज़ान के अंदर, तो आप जो है ना फिर रोज़ा छोड़ दें और आप जो है वो बाद में जा कर के रोज़ा कदा कर लें, ठीक है। तो मजबूरी वाला सफ़र तो कहाँ से, ठीक है ना, वो तो है ही नहीं ना, सही है, वो तो सफ़र के ऊपर है कि आप रोज़ा छोड़ सकते हैं। अब ये है कि भाई आप जो है वो बेवकूफ़ी की तो फिर बात तो होगी, देखिए घूम फिर करके बात वही बेवकूफ़ी पर आती है, ठीक है ना, घूम फिर करके अगर ज़रा सा अकल शरीफ के ऊपर गौर करें, ये बड़ा मुश्किल काम है वैसे, लेकिन अगर गौर करें तो घूम फिर कर वही बेवकूफ़ी की बात आती है कि भाई आप क्यों कर रहे हैं ये वाला काम, किसके लिए कर रहे हैं ये वाला काम, अल्लाह के लिए कर रहे हैं। अच्छा, अल्लाह को नहीं पता कि मेरे दिल में क्या नीयत है, अल्लाह को नहीं पता कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। उमरा कर रहे हैं, राइट, तो क्यों कर रहे हैं? सैरो तफरी के लिए। नबी अलैहि सलाम ने किसी वजह से बात कही थी ना कि एक वक्त आएगा कि जब मेरी उम्मत के लोग, अमीर लोग जो हैं, वो सैरो तफरी के लिए उमरा करेंगे, और गरीब लोग जो हैं वो मांगने के लिए या अपने कारोबार के लिए उम्र किसके लिए उम्र करेंगे, ठीक है ना? तो ऐसा होगा तो, और हो रहा है ऐसा, लेकिन हम अगर अपनी अकल शरीफ को इस्तेमाल करें तो फिर नियत करें ना कि मैं अल्लाह के घर जा रहा हूँ तो मैं क्यों जा रहा हूँ भाई? पीयर प्रेशर की वजह से जा रहा हूँ, सैर व तफरी के लिए जा रहा हूँ, है अल्लाह को राजी करने के लिए। अच्छा, अल्लाह को राजी करने के लिए जा रहा हूँ, तो फिर रमज़ान में जो है वो उम्रा करने का नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो सवाब है, तो मैं रमज़ान मुबारक के रोज़े का या तो ख्याल करूँ, या भाई हलाकत का मसला है तो फिर नहीं रखूँ रोज़ा। यानी देखें, ये जो है ना, बस वही अकल शरीफ वाली बात आती है सर, हर चीज़ में फतवे की कोशिश मत किया करें, ये एक बहुत गंदा दीन बन जाता है फिर, ठीक है? ये नहीं कि अकल को रखा जो है वो तह करके साइड पे रखा और जो है मुफ्ती साहब के पीछे पड़े हुए हैं, या मुझे फतवा दे दें, आप मुझे बता दें, आप मुझे बता दें, आप मुझे बता दें, बहुत बहुत गंदा दीन होता है ये, ठीक है? इससे बाहर निकलें ना, आपको बाहर निकालें, तब कुछ बनेगा आपका, दूसरों का बने ना बने, आपका तब कुछ बनेगा। अच्छा, बार आगे चलें, एक साल में एक बार देते हैं ज़कात, क्या वो चीज़ लेना एक साल हो गया तब अदा करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जब कोई चीज़ आपको लिए हुए एक साल हो गया तब वो ज़कात अदा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेटली मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जी जिस चीज़ को मिल्कियत जो है ना वो हमारे पास एक साल हो गई, यानी हमने जेवर खरीदा था सोने का, तो अब वो सोना हमारे पास जब एक साल गुजर जाएगा तब हम उस सोने को ज़कात देंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना? देखें, अकल शरीफ अगेन, ठीक है ना? सोने के ऊपर ज़कात वाजिब है ना, व्हाट अबाउट करेंसी? रियाल के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है, रुपए के ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है, रुपए के ऊपर भी ज़कात वाजिब है। तो अब आप 1 रुपया आपके पास आता है, तो अब आप 1 रुपया जो है वो अपने पास संभाल के रखेंगे कि 365 दिन जब इस 1 रुपये के ऊपर गुजरेंगे तब मैं इस 1 रुपये की जो है ना वो 0.025 पैसा ज़कात अदा करूंगी। भाई जिस तरह सोने के ऊपर ज़कात वाजिब है, उसी तरह रुपए के ऊपर भी ज़कात वाजिब है। तो क्या आप हर रुपए का हिसाब करते हैं या कर सकते हैं? कोई भी नहीं कर सकता, सोने का भी कर नहीं करते, ठीक है ना? तो जो एक दफा आप जब साहिब निसाब बन गए, ठीक है ना, साहिब निसाब बन गए, अब ये तफसीलात हैं उसका तो इस क्लास में इतना वक्त नहीं है ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर भी देंगे, और ये तफसील बहश देवर आपके पास वैसे भी होनी चाहिए, तो उसके अंदर ये सारे मसाइल हैं, इनको सीखें, इनको पढ़ें, ठीक है? कि बस जब आप साहिब निसाब बन गए, अब उसके बाद जो है ना जकात देने वाले दिन जो कुछ भी आपके पास जकातेबल एसेट्स हैं उन सबको ऐड करें, जैसे इस टेबल में ऐड किया गया है, उनमें से अकाउंट पेबल्स को माइनस करें, जो नेट रिजल्ट निकले, ठीक है, उसके ऊपर 25%, सॉरी 2.5% जो है ना वो कैलकुलेट करके वो जकात निकाल, बस, ठीक है? जेवर की कीमत खरीद और फरोख्त का फर्क कैसे तय करें? कोई तय नहीं करें, ठीक है? जो आज की कीमत है बस उसके ऊपर ज़कात निकालनी, ठीक है? खरीद और फरोख्त की कीमत जो है ना वो रोज़ाना के हिसाब से भी चेंज होती है, उसको कोई तय करने की कोशिश भी ना करें, ठीक है? एक मेरा एक तरावी से रिलेटेड पर्सनल सवाल है, तो पर्सनल सवाल तो आप व्हाट्सएप पे बात करें, आपके पास है सारे इसका व्हाट्सएप नंबर? अच्छा, ठीक है, तो ये मिन्हा करने वाला जो टेबल है इसमें फिर कमेटी के बकाया जात, यूटिलिटी बिल्स जो कि ज़कात निकालने की तारीख पर वाजिब हो चुके हैं, यानी इस वक्त आपके वाजिब हैं, बस उनको जो है वो आप सब्ट्रैक्ट कर दें अपने ज़कातबल एसेट्स में से, पार्टी की अदायगियां जो करनी हो, मुलाजमीन की तनख्वाहें जो ज़कात निकालने की तारीख तक वाजिब हो चुकी हों, गुज़श्ता साल की ज़कात की रकम अगर अभी तक ज़िम्मे में बाकी हो, किस्तों पर खरीदी हुई चीज़ की वाजिबुल अदा किस्तें, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो है ना इनका आप नेट टोटल निकाल लिया, तो इस मिसाल में 4,30,000 रुपये ये अकाउंट पेबल्स हो गए आपके, ठीक है? फिर पीछे वाले पेज से 11,10,000 जो क्या आपके ज़कातबल एसेट्स थे वो लिखे, और फिर जो अकाउंट पेबल्स हैं मिन्हा करने वाली वो 4,30,000, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, आपके पास 6,80,000 रुपये आ गए। ये वो रकम है जिस पर जकात वाजिब है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे लिख करके, 0.025 से, तो आपका 2.5% निकल जाएगा, वो 17,000 रुपये बनता है। ठीक है, तो इन साहब के जिनके के यहाँ पे एग्जाम्पल यूज की गई है उनके ऊपर 17,000 रुपये ज़कात है। ठीक है, अब ये 17,000 रुपये इसको आप जो है वो एक साथ भी किसी को दे सकते हैं, किसी और इसको अलग अलग करके भी, और ऐसा ऐसा करके भी दे सकते हैं, लेकिन जितना जल्द से जल्द खत्म कर दें उसको उतना ज्यादा अच्छा है। किसी को 2,000 दिए, लिख लिया अपने पास, अब मेरे पास 15,000 ज़कात रह गई है, उसमें से सबट्रैक्ट कर लिया। आजकल एक्सेल शीट जो है वो बहुत ही आसान है, बच्चे बच्चा जो है उसको इस्तेमाल कर सकता है। तो एक्सेल शीट जो है वो अपनी बना लें और उसमें ज़कातबल एसेट्स को ऊपर कैलकुलेट कर लें, और सबकी वैल्यू जो है वो एक करेंसी के अंदर ले आए। ठीक है ना, आप एक राइट साइड पे जो है वो कन्वर्जन वैल्यूज लिख करके एक्सेल शीट के अंदर उनको मल्टीप्लाई करके उनका एक करेंसी, जैसे आप सऊदी रियाल, आपके पास पैसे सऊदी रियाल के फॉर्म में है, तो हर चीज को सऊदी रियाल में कन्वर्ट कर, इवन गोल्ड की जो वैल्यू है आपके पास उसको भी सऊदी रियाज में कन्वर्ट कर लें, सिल्वर को भी कर लें, सब चीज को कर लें। फिर नीचे जो है वो थोड़ा सा टेबल बनाए जिसके अंदर जो है ना वो जो आपके अकाउंट पेबल्स हैं उन सब को जो है वो एक करेंसी के अंदर कन्वर्ट करके ऊपर से जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, उसको फिर 0.025 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसको स्पेंड करना शुरू कर दें। ठीक है, तो एक्सेल शीट का इस्तेमाल जो है वो इसमें बहुत ज्यादा आसानी पैदा कर देता है। मुझे टोटल अमाउंट डिवाइड पे 40 बहुत आसान, डिवाइड बाय 40 बहुत आसान लगता है कैलकुलेशन के लिए। आपको मर्जी है भाई, आप जैसे भी करें, 0.025 मल्टीप्लाई करें या 40 से डिवाइड करें। साहिब निसाब बनकर दोबारा माल कम हो जाए तो क्या नई तारीख तय करनी होगी? हाँ, अगर आप जो है वो नीचे गिर गए, तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, अगर आप, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो फिर वो रिकैलकुलेट करना होगा आपको अपना 1 साल। ठीक है, यानी फिर जब आप दोबारा साहिब निसाब, नहीं एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, किसी को याद है अगर, कि आप एक दफ़ा साहिब निसाब बन गए, फिर उसके बाद अगर आपकी जो टोटल नेट वैल्यू है वो साहिब निसाब से जो है वो नीचे चली जाती है, तो फिर वहां से काउंटर दोबारा से शुरू करते हैं या उससे फर्क नहीं पड़ता? ये मुझे ना ब्लैंक आउट हो जाते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है वो अपनी क्लास खत्म करते हैं। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम आपसे ले लिया, बहुत माजरत के साथ, खुसूसन पाकिस्तान और इंडिया में रहने वालों से। तो अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, हमें अपने दीन के ऊपर साबित कदम रहने और ईमान की सलामती के साथ आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।